साथ एक क्लास चल रहा था,
दस ग्यारह 1966 गुरुवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी, वो शिव कौन बोल रहा है, किसके द्वारा बोल रहा है, वो शिव जिसको अभी हम याद करते हैं, हे पतित पावनाओ, उनकी कोई जयंती यहाँ होती है भारत में? किनकी? उनकी। कौन बोल रहा है, किसके तन में बोल रहा है? बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा? वो शिव जिसको अभी हम याद करते हैं, हे पतित पावनाओ, उनकी कोई जयंती यहाँ होती है भारत में? जयंती जन्मदिवस की जय जयकार माने जयंती, साकार की होती है या निराकार की होती है? होती है क्या जयंती? कुछ भी समझ में नहीं आता है उन बच्चों को, किन बच्चों को? उन बच्चों को, तुम बच्चों को नहीं, इन बच्चों को नहीं, माना है बीके वालों को और इन बच्चों को जो बाजू में कर दिए, माने ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स इन बच्चों को फिर भी समझ में आ जाता है आगे पीछे, लेकिन उन बच्चों को, इन बच्चों को जो दूसरे धर्म के फॉलोअर्स हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो बाप अभी बैठकर समझाते हैं। कि तुम मनाते भी हो शिव जयंती, शिवरात्रि, अज्ञान अंधकार की रात्रि, तो जरूर शिव बाबा यहाँ ही जन्म लेते हैं। कौन कौन जन्म लेते हैं? शिव बाबा यहाँ ही जन्म लेते हैं। कहाँ? भारत। भारत जड़ जमीन में जन्म लेते हैं या कोई चैतन्य आत्मा की बात है? देखो, जहाँ जहाँ जो भी धर्म स्थापन करने वाले का जन्म होता है, वो कितना ऊंच गाया जाता है, बड़े से बड़ा तीर्थ गाया जाता है। कोई भी धर्म पिताओं को ले लो, किससे टैली करना चाहते हैं? उन धर्म पिताओं को किससे टैली करना चाहते हैं? अरे आदि सनातन देवता धर्म का जो धर्म स्थापक है उससे टैली कर रहे हैं। धर्म स्थापन करने वाले की बात है, उन धर्म स्थापकों ने कोई खास स्थान पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लिया होगा? तो आदि सनातन देवी देवता धर्म का भी जो धर्म स्थापक है उसका भी कोई खास है। आत्मा की बात है, आत्मा का कौन सा स्थान होता है? अरे आत्मा कहीं स्थित होती है? आत्मा शरीर में आती है तो स्थिर होती है या नहीं होती है? तो वो स्थान हुआ। जैसे सामान्य रूप से कोई माता में निर्जीव गर्भपिंड में आत्मा आती है, तो कहीं स्थिर होती है या नहीं होती है? है? कहाँ? है? गर्भपिंड में कोई तो स्थान होगा जहाँ अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा आकर स्थिर होती है। ऐसे ही देवी देवता सनातन धर्म का धर्म स्थापक कितना ऊंच गाया जाता है, बड़े से बड़ा तीर्थ गाया जाता है। तो यह जो भारत है, यह कह के किस तरफ इशारा किया? अरे हैं, नाम क्या दिया? अरे बड़े से बड़ा तीर्थ का नाम क्या दिया? भारत। चैतन्य है या जड़ है? है चैतन्य है। नाम किस आधार पर? क्या काम है? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो सदा ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला, संगम में शिव बाप आते हैं तब की तो बात ही निराली, क्योंकि शिव बाप तो जन्मण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है ही। कैसा त्रिकालदर्शी? बड़े से बड़ा ज्ञाता है, जानकार है। काहे का? सच्चाई का, सत्य का। इसलिए उसे क्या कहते हैं? गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। जो सत्य की जानकारी है, तीनों कालों की जानकारी, अखूट जानकारी है या खूटने वाली है? अखूट जानकारी। कैसी अखूट? कि उस जानकारी का, उस ज्ञान का सारा भंडार कोई ले ले तो भी है, तो भी संपूर्ण बचता है, कभी खूटता है ही नहीं। तो वो भी बाप है या नहीं है? आत्मा तो है, तो किसका बाप है? आत्माओं का बाप है। तो आत्माओं का जो बाप है, उसका कोई बड़ा बच्चा होगा या नहीं होगा? है 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं। जो मनुष्य होने के कारण मनन चिंतन मंथन कर सकती है, मननात्म मनुष्य, उन 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कौन सा बच्चा है जो आत्माओं के बाप था, सारा अकूट भंडार धारण कर लेता है। बाप है तो वर्षा देता होगा ना, बाप हो और वर्षा ही ना दे। बाप का मुख्य काम क्या? जन्म देना और अंत में वर्षा देना। तो काई का वर्षा देता होगा, जमींदार बाप जमीन का वर्षा देता, धनवान बाप धन का वर्षा देता, ये तो ज्ञान धन का बाप है ना, तो काहे का वर्षा देता? ज्ञान धन का वर्षा देता, उस ज्ञान धन के वर्षे को कोई बच्चा तो 100% यूटिलाइज करता होगा। हिस्ट्री में देखा जाए तो मोस्टली जो भी और जितने भी बाप हुए हैं, उन्होंने अपना वर्षा किसको दिया है? बड़े बच्चे को। ये भी देखा गया कि बड़ा बच्चा ही लंबे समय की प्योरिटी से उत्पन्न होता है। पवित्रता कहाँ से आती है? गीता में तो कहा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यही विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। कौन सा ज्ञान है? देहधारी मनुष्यों का ज्ञान या विदेही का ज्ञान? जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता, वो ज्ञान जो धारण करता है, जो स्वयं धारण करेगा वो दूसरों को भी कराएगा, स्वयं धारण नहीं करेगा तो दूसरों को भी नहीं करा सकता। और ज्ञान सिर्फ लेने देने की चीज है, सुनने सुनाने की चीज है, समझने समझाने की चीज है या प्रैक्टिकल जीवन में लाने की भी है? व्यक्तिगत जीवन में धारण होता है तो उसका गायन और पूजन होता है। प्रैक्टिकल जीवन में धारण ही नहीं तो गायन और पूजन भी नहीं हो सकता। तो बताया जो प्रैक्टिकल जीवन में सिर्फ संगम में ही नहीं पुरुषोत्तम संगम योग में ही नहीं पूरे ब्रॉड ड्रामा में उस ज्ञान धन की पूंजी को मनसा के संकल्पों में वाचा में दृष्टि में वृत्ति में और कर्मेंद्रियों के प्रैक्टिकल कर्म में धारण करता है। सौ परसेंट धारण करेगा तब ही ऊंचे से ऊंचे बाप का बच्चा कहा जाएगा। ऊंचे से ऊंचा बाप कौन है? धर्म पिताएं, ग्रेट फादर्स। उन बापों का भी बाप धर्म पिताओं का भी बाप। जो उनके शास्त्रों में उनके फॉलोअर्स में गाया जाता है मान्यता प्राप्त भी है परंतु बहुत पुरानी बात होने के कारण डिटेल सारा भूल गए। किसके बारे में है? कौन उन धर्म पिताओं के उन धर्म पिताओं अलग अलग धर्मों के बापों का भी बाप कौन? जो उन धर्मों में गाया जाता है आदम एडम के रूप में आदिनाथ के रूप में आदिदेव के रूप में गाया जाता है भारतीय परंपरा में पूजन भी होता है। और बापों का भी बाप है धर्म पिताओं का भी बाप है तो पूजा भी जाता होगा। छोटे रूप में पूजा होती होगी नंबरवार रूप में पूजा होती होगी जैसे 33 करोड़ देवताएं नंबरवार हैं या अव्वल नंबर में पूजा होती होगी है? वो अव्वल नंबर रूप कौन सा है जिसकी अव्वल नंबर में पूजा होती है है शिवलिंग वो शिवलिंग की बात हो रही है। शिव की बात हो रही है या शिवलिंग की बात हो रही है? है शिवलिंग की यहाँ बात हो रही है। जो लिंग रूप बड़ा रूप जिसके लिए बाप ब्रह्मा के तन में कहते हैं, छोटा रूप नहीं याद आता तो बड़ा रूप ही सही। प्रैक्टिस करते करते कुछ छोटा रूप भी याद आने लगेगा, क्योंकि शिव बाप जिस तन में मुकर रूप से प्रवेश करते हैं वो आत्मा पहले पहले देह विमानी या आत्मा विमानी बड़ा रूप धारण करने वाली या छोटा रूप धारण करने वाली? इसलिए यादगार में यज्ञ के याद में भी और भारत की गवर्नमेंट में भी उस समय जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी तो निशान क्या था? है? है? दो बैलों की जोड़ी, माना वो दो बैल कौन सी आत्माओं की निशानी? राम और कृष्ण। बैल सांड को भी कहा जाता है, ट्रेंड किया जाता है, तो खेती के काम में भी आता है। यहाँ कौन सी खेती है? ज्ञान की खेती। किस बात में ट्रेंड है, किस बात में पारंगत है? जो ईश्वरीय ज्ञान है उस ज्ञान के लेन देन में, सुनने सुनाने में, समझने समझाने में और लास्ट में प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने में वो बाप का बड़ा बच्चा पारंगत बनता होगा या नहीं? है? 100% पारंगत बने तब ही कहा जाएगा जो बाप का विरुद्ध है, आत्माओं के बाप का, कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाता हूं। तो कोई बच्चा आप समान बनता भी होगा या नहीं बनता होगा? जो बच्चा बाप समान बनता है उसी के लिए बोला वो शिव। ब्रह्मा के तन में बोलने वाला कौन? स्वयं शिव। फिर वो शिव क्यों कहता? किसके लिए कहता? उनकी जयंती होती है भारत में, ये नहीं कहता ब्रह्मा के तन में मेरी जयंती होती है। जयंती साकार की होती है या निराकार की? जन्म रूपी जयंती जय जयकार, जहां से नाम पड़ा जयंती, वरदान मिला हुआ है। क्या विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किससे जन्म मिलता है? अरे जिसकी जयंती की यहाँ बात हो रही है उसको जन्म किससे मिलता है? अरे शिव जयंती की बात हो रही है, जयंती साकार की मनाई जाती है, तो जिसकी जयंती बर्थ पाउंड बताई और बाकी सब की जयंती बर्थ नाके पेन ही बताई, तो बर्थ पाउंड जयंती पुरुषार्थ के अंतिम क्षण की बात है या मध्य पुरुषार्थ की बात है या आदि पुरुषार्थ की बात है? अंत की बात है। कौन सा अंत? जिसके लिए शास्त्रों में भी लिखा है, ब्रह्मा ने तीन बार ब्राह्मण षष्ठी रची और तीनों बार पसंद नहीं आई तो क्या कर दिया है? तीनों बार खारिज कर दी। फिर बाद में चौथी बार सृष्टि रची ब्राह्मणों की, वो सफल हो गई। खारिज नहीं की, वो ही ब्राह्मणों की सृष्टि जिसमें नौकुरियों के ब्राह्मण तैयार हो जाते हैं, नंबर बार तैयार होते हैं और ब्राह्मण ड्रामा में पहले सतयुग में नौ नारायण की गद्दियां अपने फॉलोअर्स के साथ टाइम टू टाइम स्थापित होती रहती है। जो नारायण बनते हैं वो ही त्रेता में, नंबर बार राम सीता बनते हैं, बाकी बचे त्रेता में कितने जन्म है? बारह जन्म। तो बाकी तीन जन्मों में कोई है या नहीं है? है, वही आत्माएं निमित्त बनती है जो त्रेता के अंत में कटी हुई सीढ़ियां दिखाई गई है। उनके मुखिया विनाशकारी या स्थापनाकारी ज्यादा है? विनाशकारी। है सतयुग में देवी देवताएं, एक जैसी कैटेगरी के या नंबर बार वो ही कम कुरियों वाले देव ब्राह्मण सो देवताएं द्वैतवादी धर्म पिताओं के आने से, किनके आने से? द्वैतवादी माने दो धर्म, दो राज्य, दो मतें, दो कुल, दो भाषाएं, दो से चार, चार से आठ, द्वैतवाद बढ़ता ही जाता, झगड़े की दुनिया बढ़ती ही जाती। वो कमजोर आत्माएं द्वैतवादी युग से दूसरे देवान वाले धर्म पिताओं के झांसे में आ जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। सचखंड भारत से निकलकर कहां चले जाते? झूठ खंडों में चले जाते। वो ही आत्माएं कलयुग के अंतिम जन्म में जब शिव बाप आते हैं सब आत्माओं का बाप, तो उन सब भारतवासियों को कलेक्ट करते हैं कहां? है भारत में। वो आत्माएं अंतिम जन्म में फिर इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी तो हो जाती, परंतु बाप से जो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए वो पूरी प्रॉपर्टी लेने में अंतर पड़ जाता है या नहीं पड़ता? क्यों है? क्यों अंतर पड़ता बाप की प्रॉपर्टी लेने में? पहचान के लिए ही तो ज्ञान धन की प्रॉपर्टी है। पहले ज्ञान आता है, यह ज्ञान दाता बुद्धि में आता है। पहले तो ज्ञान आता है ना, तो जो ज्ञान धन आया मूल रूप में आत्मा की पहचान भी आई तो वो जो दूसरे धर्म से कन्वर्ट होकर के आत्माएं आती हैं वो नंबरवार नीची गुरी के ब्राह्मण क्यों बन जाते? देने वाला बाप पक्षपाती है क्या? सबको एक जैसा देता है या पक्षपात करता है? फिर अंतर क्यों पड़ जाता है? धारणा तो बाद में करेंगे। सुनेंगे समझेंगे फिर बाद में धारण करेंगे। तो वो प्रॉपर्टी लेने में क्यों अंतर पड़ जाता है? वो अंतर के संस्कार कहां से आते हैं? अरे हाँ, जन्म जन्मांतर जो आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होकर के रही हैं, उनकी मनसा में, मन के संकल्पों में, वाचा में, उनकी कर्मेंद्रियों में वो धर्म पिताओं का दिया हुआ अज्ञान भरा रहता है, जिससे जन्म जन्मांतर प्रभावित होकर के रही। वो अज्ञानता के संस्कार, संग के रंग के संस्कार जल्दी खत्म होने वाले नहीं होते। जैसे बाप ने ब्रह्मा मुख से बोला, ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी में बोला, कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, इस जन्म में ब्राह्मण बन जाए तो भी इसका अंतिम अंजाम क्या होगा? पुरुषार्थ करते करते अंत में उसका क्या असर होगा? भले इस जन्म में ब्राह्मण बन जाए तो भी क्या होगा? वैश्याओं की तरफ ही चली जाएगी। पक्का ब्राह्मण नहीं बन सके। तो नंबरवार धर्म है, नंबरवार उनके धर्म पिता है। हैं तो सब बाप के बच्चे आत्माएं, मनुष्य आत्माएं हैं या नहीं है? लेकिन ज्ञान के आधार पर, ज्ञान की धारणा के आधार पर, बाप की पहचान के आधार पर छोटे बड़े बच्चे हैं या कोई और आधार है छोटे बड़े बच्चे का? है ज्ञान का आधार है। जैसे ब्रह्मा के चार पुत्र हुए मानसी पहले पहले, उनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम सनक कुमार, बाकी तीन पुत्र बड़े थे। तो सनक कुमार बड़े क्यों कहलाए? ज्ञान और योग में तीखे गए, इसलिए बड़े कहे। ऐसे ही ये वेदारी धर्म पिताएं जो भगवान बाप के सृष्टि पर आने पर भी अपने देह अहंकार को त्याग नहीं कर पाते, और नंबरवार बन जाते। कोई छोटे धर्म पिता है, कोई बड़े धर्म पिता है। छोटे धर्म पिताएं बने तो ब्रॉड ड्रामा में जैसे परिवार में छोटे बच्चे होते हैं तो बाद में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेते हैं या पहले पहले लेते हैं? ऐसे ही इस ब्रॉड ड्रामा में वो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स नंबरवार बाद में प्रत्यक्ष होते रहते। कारण क्या बनता है? है? अरे एक ही कारण बनता है, बाप की प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं कर पाते। धारण नहीं कर पाते। उनके फॉलोअर्स का भी यही असर होता है। जब ज्ञान धन ही नहीं ग्रहण कर पाते तो ज्ञान धन में पहला मुख्य पॉइंट कौन सा है? बाप की पहचान। बाप की पहचान में भी नंबरवार बनते या अब्बल नंबर में आते? नंबरवार बन जाते। मूल कारण क्या बनता? जो नंबर वार बन जाते, हैं? जो ज्ञान है साक्षात ईश्वर का ज्ञान, जिसे सत्य कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है, जिसे गीता में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी बताया, क्या? जिस प्रॉपर्टी के आधार पर दुनिया के सारे काम होते हैं, है? पवित्रता, और पवित्रता किस आधार पर आती है? है? पवित्रता का आने का आधार है सत्य को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना। प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना माने प्रैक्टिकल जीवन में पवित्रता को धारण करने वाली मां गौरी कही जाती है। कि महाकाली कही जाती है, मां गौरी कही जाती है। तो महागौरी जो पवित्रता को धारण करने वाली बड़े से बड़ी शक्ति है, उसको किसकी शक्ति कहा जाता है? है? शिव शक्ति। शिव है या शिव की शक्ति है? है? शिव की शक्ति है। तो दोनों के बीच में मूल क्या है? शिव और शिव की शक्ति, दो बातें, दो चीज या एक ही चीज है? बड़े धीरे से बोले, है? दो चीज है। एक नंबर वन और दूसरा नंबर दो। जो नंबर वन है उसका संसार में क्या गायन पूजन है? है? शिव शंकर। शंकर पुरुषार्थी है, या पुरुषार्थ संपन्न है? पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ संपन्न नहीं हुआ है। गायन और पूजन संपन्न स्टेज का होता है या अधूरी स्टेज का होता है? संपन्नता का गायन होता है, पूजन होता है। तो जो संपन्न है उसी के लिए यहाँ बोला है वो शिव जिसको अभी हम याद करते हैं। पुरुषार्थी रूप नहीं है, कैसा रूप है? संपन्न रूप है। क्या रूप है? संपन्न रूप क्या है? हैं? मेरा करीसी? हाँ, संपन्न रूप है जिसे हम निराकार और साकार का मेल कहते हैं। शिव आत्मा तो है, आत्माओं का बाप तो है, लेकिन इस सृष्टि में सदा काल कायम है, है? सदा काल कायम नहीं है। और शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा काल कायम है। जो सदा काल कायम है वो सतयुग त्रेता जो ब्रह्मा का दिन कहा जाता है, वहां भी आत्मा की संपन्न निराकारी स्टेज में कायम है। और द्वैतवादी द्वापर कलयुग में भी जो सिख गाते हैं, है सी भी सत्य हो सी भी सत्य, क्या वर्तमान में भी सत्य है, भविष्य में भी सत्य होगा और पास्ट में भी सत्य ही था, उसका गायन और पूजन सार्वभौम है। सारी दुनिया में जो देश विदेश में खुदाइयां हुई उनमें वो लिंग मूर्तियां ही मिली हैं, परंतु वो लिंग मूर्तियां भक्ति मार्ग की सत्व प्रधान स्टेज वाली हैं या बाद में भी बनी हुई है? हैं? बाद में भी बनी। फिर सत्व प्रधान स्टेज वाली मूर्ति कौन सी है? कोई हिस्ट्री में है? सोमनाथ मंदिर द्वापर के आदि में सोमनाथ मंदिर में क्या यादगार थी? है? क्या यादगार थी? हाँ, हीरा जड़ित लिंगाकार का पत्थर था, निराधार देखने में आता था या आधार लेकर खड़ा था? है? निराधार था। उस सोमनाथ के मंदिर में शिवलिंग में क्या क्या दिखाया गया है? हीरा जड़ा हुआ दिखाया गया और है मूर्ति तो नहीं, वो मूर्ति है ही नहीं। मूर्ति और अमूर्त दो शब्द हैं, मूर्त रूप और अमूर्त। अमूर्त माने जिसकी मूर्ति नहीं, अमूर्त माने जिसकी मूर्ति। तो मूर्ति तो है लेकिन अमूर्त है, ये क्या बात हुई? हाँ, कैसे? कैसी स्टेज में? रूहानी स्टेज। रूह की यादगार क्या?
देहबान में नहीं।
देहबान में नहीं तो बड़ा आकार क्यों? देह बड़ी होती है या आत्मा बड़ी होती है? तो जो बड़ा रूप है वो देह को दर्शित करता है या अणुआयान सामने को गाया हुआ है? अणुरूप अति सूक्ष्म रूप वो लिंग अति सूक्ष्म है या साकार बड़ा रूप है? देह बड़ी होती है और आत्मा अत्यंत सूक्ष्म होती है, लेकिन बड़ा रूप होते हुए भी वो अमूर्त ही गाया जाता है, जिसका गीता में वर्णन है अव्यक्त मूर्तिना। क्या? कैसी मूर्ति? अव्यक्त है। व्यक्त माने आंखों से देखने योग्य, अव्यक्त माने जो आंखों से न देखी जाए। तो जो लिंग मूर्ति है वो अव्यक्त कैसे है? आंखों से देखने योग्य नहीं है, बलि प्रकार। अरे उसमें हाथ पांव नाक आंख कान ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां हैं, तो व्यक्त है या अव्यक्त है? साकार होते हुए भी अव्यक्त है। क्यों? आत्मा के पुरुषार्थ की बात है। नामीय पुरुषार्थ, पुरु माने शरीर रूपी पुरी, शा माने शयन करने वाला। शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाला, आराम से चैन पूर्वक, कोई बेचैनी नहीं। आत्मा किस स्टेज में है? देह की याद में है, देह की इंद्रियों की याद में है, या देह की इंद्रियों से अतीत है? है अतीत है, परे है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज जब इस स्टेज में टिक जाता है कि ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों, देह की दोनों प्रकार की इंद्रियों की कोई स्मृति नहीं रहती मनबुद्धि रूपी आत्मा में, तब अति इंद्रिय सुख भोगती है। जो भी संगी साथी हैं वो भी अतिंद्रिय सुख भोगते हैं। नंबर वन कि एक ही बात है संगी साथियों की भी बात है, जो गायन है अतिंद्रिय सुख देखना हो पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोप गोपी क्यों कहा है? गोप गोपी माने क्या? गुप्त पुरुषार्थ, दौड़ने का, चलने का, उड़ने का, क्या गुप्त पुरुषार्थ है? जैसे बाप का गायन है, मनुष्य सृष्टि के बाप का गायन है, पूजन है, पूजनीय बनता है, बड़े से बड़ा पूज्य रूप दिखाया गया है। जैसे मनुष्य सृष्टि का बाप, वो मनुष्य आत्मा जो निराकारी स्टेज धारण करती है शरीर के रहते हुए ही, शरीर की कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों के रहते हुए ही ऐसी स्टेज धारण करती है, वो स्टेज जो संगी साथी धारण करते हैं, कौन सी पढ़ाई से है? राजयोग की पढ़ाई से। क्या राज भरा हुआ है? अरे नाम का राजयोग है या काम भी है? क्या काम है? है बाप से संबंध जोड़े हैं, गुप्त संबंध जोड़े हैं, दुनिया नहीं जानती। वो जोड़ने वाले वो जानते हैं संबंध, सम्माने संपूर्ण, सम्माने समान, बंध माने बंधन। तो जो बंधन जोड़े हैं वो संबंध अनेक प्रकार के देह की इंद्रियों के साथ बनते हैं या बिना इंद्रियों के बनते हैं? है? इंद्रियों के साथ बनते हैं। तो वो संबंध जो भगवान बाप के साथ सर्व संबंधों का गायन है, वो संबंध है प्रैक्टिकल में जुड़े हैं, लेकिन दिखावे के लिए नहीं। संबंध जोड़ना बड़ी बात या संबंध निभाना बड़ी बात? सिर्फ जोड़े ही नहीं है, संबंधों को निभाया भी है, लेकिन है नंबर बात। ऐसे गुप्त संबंध जोड़े हैं परंतु जब संपन्न स्टेज पुरुषार्थ की बनी तो इंद्रियों के वो संबंध मन बुद्धि की स्मृति से गायब हो गए या बने रहे? क्या हुआ है? गायब हो गए। ऐसी स्टेज बना ली, बाप समान स्टेज बना ली, ऐसी जो बाप समान स्टेज बनाने वाली आत्माएं हैं, उनकी संख्या कितनी बताई? 16,108। बाप के संबंध में आने वाली आत्माएं, जिन संबंधों में राजयोग का राज भरा हुआ है, कौन से युग में? पांच हजार वर्ष के ड्रामा के शूटिंग काल में, रिहर्सल काल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, ऐसी स्टेज धारण करने वाली आत्माएं जन्म जन्मांतर राजाई के लायक बनती हैं। नंबर वार या सब एक जैसे? नंबर वार बनते। जैसे आज का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उनके साथ हर समय बॉडीगार्ड के रूप में रहने वाला या उनका पीए बनकर रहने वाला, वो भी अपनी कुछ राजाई चलाएंगे, दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? है, उनकी भी कुछ सत्ता होती है या नहीं होती है? ऐसे ही ये 16,000 संबंधी आत्माएं नंबरवार राजाई में सत्ता धारण करती है। और उन सत्ताधारियों में जो मूल आधार है, जैसे कोई परिवार में, तो परिवार में मूल कौन होता है? परिवार के भांति कहां से जन्म लेते हैं? किससे जन्म लेते हैं? है? मां से जन्म लेते हैं। मां से जो जन्म लेते हैं, उन जन्म लेने वालों का बीज भी कहां से आता है? बाप से आता है। और बाप में कहां से आता है? कोई दूसरा देने वाला है या स्वयं सिद्ध है? ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का बीज जब राजयोग की पुरुषार्थ करते करते संपन्न स्टेज में जाता है, तो शिव समान बन जाता है। और वो ही बड़े से बड़ा तीर्थ हुआ। तीर माने किनारा, था माने स्थान, किनारे लगने वाला स्थान, एक ठिकाने पहुंचने वाला स्थान। तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं इस सच्चे रूपी रंगमंच पर, सबका आशय एक है और वो आशय आत्माओं के लोक में है या इस साकार मनुष्य सृष्टि में है? है? क्यों? आत्माएं कहां की वासी है? आत्मलोक की वासी है। तो आत्मलोक इस सृष्टि में है या इस सृष्टि में जो सूर्य चांद सितारे हैं, पांच तत्व हैं, उनसे परे है? इस सृष्टि में नहीं है? है या नहीं है? कैसे? बोला तो है, तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कहाँ उतार लेंगे? मनुष्य लोक में कहाँ? कहाँ? माउंट आबू है? माउंट आबू में 500 करोड़ मनुष्य आत्मा इकट्ठी हो जाएंगी? है? फिर राजधानी स्थापन होना नई दुनिया की, वो तो बहुत थोड़ी आत्माओं की बात है। और मनुष्य आत्माएं जहां इकट्ठी होंगी वो तो बहुत है, 500-700 करोड़ है। उन सबका आश्रय स्थान एक है, ये मनुष्य शक्ति एक झाड़ है या नहीं है? है? झाड़ का मूल बीज, बीज में सारा झाड़ है या नहीं है? बीज में से सारा झाड़ 500-700 करोड़ पत्तियां निकलती हैं या नहीं निकलती? फिर वो सारी पत्तियां 500-700 करोड़ पत्तियां आखरीन किस में समा जाती है? बीज में समा जाती? वो तो जड़ हजार की बात हुई। चैतन्य मनुष्य सृष्टि में भी बीज है ना, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसके लिए बोला है क्या? बोला है अरे कोई महामंत्र बोला है? मन मना भव किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? अरे किसने बोला? शिव बाप ने बोला। उसको मन है जो मेरे मन में समा जा कहे? है? है? नहीं? तो शिव बाबा मत मना भव मेरे मन में समा जा। किसमें समा जा? मेरे मन में समा जा। शिव बाप को तो मन है ही नहीं, वो तो सदा मन है, हैं? सदा मन है या बेचैन रहता है? सदा मन है। तो मन मना भव ये महामंत्र किसके लिए खास लागू होता है? किसके लिए लागू होता है? शिव बाबा के लिए लागू होता है। जिस शिव बाबा का यादगार बनाया जाता है, शिव मंदिर बनाया जाता है, जो सार्वभौम है, सारी दुनिया के देश विदेश में वो खुदाइयां हुई है, उनमें लिंग मूर्तियां मिली हैं, तो कब की यादगार है? है? हाँ जी, संगम युग में ही कोई टाइम हुआ है, जब याद करने वाले उस निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप, जो आत्माओं का बाप है, वहां तक नहीं पहुंच सके। कौन है जिनके लिए बोला, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है, समझाने पर भी नहीं समझ में आता है। किनको है? दूसरे धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स को। उनको समझाएंगे आप कि वो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी आत्मा कौन है, क्या करती है, कैसे करती है, उनको समझ में आएगा? ऐसे ही बोलते रहते हैं, अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया, अल्लाह मियाँ अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता। अल्लाह मियाँ को जोर से पुकारते हैं, अल्लाह हो अकबर। अरे उसको कान है क्या? उसके कानों में आवाज पहुंचती है? कुछ समझ में नहीं आता। इन बच्चों को फिर भी समझ में आ जाता है। किनको? हाँ, तुम बच्चों की बात नहीं कही। क्यों क्यों नहीं कही? कि तुम बच्चों की समझ में आता है, न समझने का कारण क्या है? न समझने का कारण है कि उन्होंने मनुष्य सृष्टि के निराकारी बीज जो निराकारी स्टेज में टिक जाता है, पुरुषार्थ के अंत में, उसको पहचाना है, लेकिन उसके भी बाप को नहीं जाना है। इसलिए 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं महामृत्यु के समय किसको याद करेंगी? है महामंत्र तो उनको भी मिलेगा। कौन सा महामंत्र? मत मना बाबा मेरे मन में समा जा, तो जिसके मन में समा जा उसके मन में क्या है, कौन सा संकल्प है जिसमें समा जा। बाकी सब संकल्पों को तिलांजलि दे दे, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा में अलग अलग संकल्प चलते हैं, अलग अलग बुदबुदे बुदबुदाए रहे हैं, या एक जैसे संकल्प भी चलते हैं। तो सबकी मन बुद्धि रूपी आत्मा में एक ही बात हो, एक ही संकल्प हो। कौन सा एक संकल्प? जो बोला मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो मेरे मन में जिसके लिए बोला उसमें, उस मन में क्या संकल्प है जिसमें समा जा है? मैं आत्मा ज्योतिबिंदु आखरीन महामृत्यु के समय सच्चे रूपी रंगमंच की सभी मनुष्य आत्माएं, यहां तक के 500-700 करोड़ भी मनुष्य आत्मा भी किसको याद करेगी है? इसको याद करेगी? अरे शिव बाबा को याद करेगी, शिव बाबा को याद करेगी या शिव बाप को याद करेगी? शिव बाबा को याद करेगी। और वो ही शिव बाबा जो साक्षात्कार में बनाया गया झाड़ का चित्र, जिसमें झाड़ के ऊपर नगर रूप ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है, जहां मनुष्य सृष्टि की सारी आत्माएं आकर्षित हो रही है। कहां है? अरे सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन और कहां? कौन? अरे मनुष्य सृष्टि का बाप महामृत्यु के समय अंतिम क्षणों में कहीं होगा या नहीं होगा? कहां? विदेशों में? कहां है? भारत में होगा। और भारत में जहां कहीं भी होगा, जिस स्टेज में होगा उसकी स्मृति में, उसके प्यार में, उसकी याद में इस सृष्टि की सभी मनुष्य आत्माएं उस याद में समा जाएंगी या नहीं समा जाएंगी? जी तो बनाई दिए, मैं तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाए। उन्होंने देवान की गीत गा दिए। देवान की बात है, है? कि आत्म की स्टेज में समझ आने की बात है। आप आध्यात्मिक स्टेज में समझ आने वाली बात है कि स्वयं भी इस मनुष्य सृष्टि की हर आत्मा अपने को आत्मा समझे, ज्योति बिंदु समझे, और वो ज्योति बिंदु आत्मा को वो बाप आकर्षित करने वाला, जिसका नाम भक्ति मार्ग में भारत में कृष्ण दे दिया है। कृष्ण माने आकर्षित करने वाला, खींचने वाला, सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं को खींच रहा है। तुम बच्चों के लिए खास बोला, कैसे खींचेगा है? अरे कैसे खींचेगा? अरे कोई खास तरीका नहीं बताया? अरे नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। कैसे ले जाएगा? नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। नैन तो छोटे हैं, हैं? और बैठने वाले तो बड़े हैं, कैसे बैठेंगे? और एक तो है नहीं, है ढेर के ढेर हैं, तो क्या मतलब है? नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा, इसका क्या मतलब है? जो चीज आंखों से देखी जाती है वो मन बुद्धि में याद आती है। मन बुद्धि में याद आती है तो जो याद आता है उसकी याद में समा जाने की बात है। तो जिनको बाप प्यार से खींचेगा वो पहले समा जाएंगे, या जिनको धर्मराज खींचेगा, जबरियन खींच के ले जाएगा वो पहले समा जाएंगे? तो प्यार पैदा हो जाएगा, जब पहचान पूरी होगी तो प्यार भी होगा। पहचान नहीं है तो देहधारियों में प्यार जाता है, पहचान है अपनी आत्मा की पहचान है, आत्मा के बाप की पहचान है, जिस बाप से जन्म जन्मांतर की सुख शांति का वर्षा मिलता है उसकी पहचान है, तो उसमें प्यार आ जाएगा। तो बोला जो भारत है वो बड़े से बड़ा तीर्थ, परंतु ड्रामा के प्लान अनुसार ये किसको भी मालूम न होने के कारण, किसको भी मालूम नहीं कि ये कोई हमारे गॉड फादर की भूमि है। भला माता पिता जिसको कहा जाता है, कहते भी है गॉड फादर का, ये कोई बर्थ प्लेस है क्या? क्या बर्थ प्लेस है? हा? भारत है ना? अगर ये गॉड फादर और फिर पतित पावन, क्या बताया? गॉड फादर भी है और पतित पावन भी है। अगर पतित पावन सर्व की सदगति दाता का जन्म स्थान यहाँ है, सर्व की सदगति, सर्व कौन, कौन सब, सब आत्माएं, आत्मा की सदगति, 500-700 करोड़ सारा मनुष्य आत्माओं की सदगति, आत्माओं की सदगति मन सत गति सच्ची गति। सच्ची गति क्या होती है? दुर्गति क्या होती है? उसी गीता में बताया, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादये, उत मन ऊपर, हरेक आत्मा को जबरियन सहज सहज नहीं जाती है, तो भी मन बुद्धि रूपी आत्मा को, ज्योति बिंदु आत्मा को हरे हरा करके ले जाए। कहाँ ले जाए? ऊपर की ओर हरण करके ले जाए। ना आत्मानम अवसादे, आत्मा को नीचे न जाने दे, मने गड्ढे में न जाने दे, मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु आत्मा को कहाँ याद करे, जहां हरण करके ले जाए। कहां याद करे? गड्ढे में है? दुनिया में जो स्थिति है अभी, देहभान की स्थिति, जब अपन को मनुष्य आत्माएं देह समझ बैठी, तो जन्म जन्मांतर देह समझने के कारण देह की इंद्रियों का सुख लेते हैं, तो जीवन भर जो इंद्रियों का सुख लेते हैं स्त्री पुरुष, अंत में वो इंद्रियों का सुख क्या होता है? याद आ जाता है। जो याद आता है उसके आधार पर रिजल्ट क्या आता है? स्त्री याद करती है तो जिस रूप को याद करती है अगले जन्म में वो ही रूप धारण कर लेती है। और पुरुष भी जीवन भर जो इंद्रिय से सुख लिया है, अंत समय मृत्यु के समय वो ही सुख याद आ जाता है, इंद्रिया याद आ जाती है, तो वो ही रूप मिल जाता है। पुरुष को स्त्री रूप और स्त्री को पुरुष रूप मिल जाता है। जो भी रूप मिल जाता है वो गड्ढे में याद किया या सत्य माने ऊंची ऊंची स्टेज में याद किया। अगर मान लो बड़ी बुरी कुटी, उसको क्या कहते हैं? ब्रकुटी। ब्रकुटी में अगर अंत समय याद करे तो सदगति होगी या दुर्गति होगी? सदगति होगी। लेकिन याद कहाँ करते हैं? है
नीचे
गड्ढे में याद करते हैं, इसलिए अंत समय में वो स्मृति आने के कारण दुर्गति होती है या सदगति होती है? इसलिए बोला क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अर्जुन ने भगवान से पूछा, ये मन एकाग्र करना बड़ा दुष्कर है, एकाग्र होता ही नहीं। तो क्या बोला? अभ्यास है न तो कौनते बार बार अभ्यास करो, थको मत। क्या ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जैसे सन्यासी कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, है आग और कपूस इकट्ठे रह ही नहीं सकते। और बाबा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे देवताएं लक्ष्मी नारायण के जैसे देवताएं इकट्ठे रहते हैं या नहीं रहते हैं? है रहते हैं। तो वो इकट्ठे रह सकते तो हम आत्माएं क्यों नहीं इकट्ठी रह सकती? इस इकट्ठे रहने की ये युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति है? क्या युक्ति? अरे अभी तो बताइए, जीत पानी है या नहीं पानी है? है जीत पानी है। तीर तलवार की जीत पानी है, हिंसक युद्ध में जीत पानी है या अहिंसक युद्ध माया का युद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का? उसमें भी डकैत को मार गिराया, मुखिया को, तो युद्ध में विजय होगी या हार होगी? इसलिए कहा जाता है काम जीते जगत जी, इंद्रिय जीते जगत जी। वो तो ठीक, इंद्रिय जीते जगत जी, भक्ति मार्ग में पहलवानों ने अखाड़े बनाए दिए, क्योंकि अपन को देह समझते हैं, देह का युद्ध करना सिखाते हैं उस्ताद। यहाँ तो देह की बात नहीं है, यहाँ बात काहे की है? आत्मा की। लेकिन आत्मा किसके अटैचमेंट में फंसी हुई है? देह के अटैचमेंट में फंसी हुई है। इस देह का जो मोह है, अटैचमेंट है, देह की इंद्रियों का जो अटैचमेंट है जन्म जन्मांतर का, युद्ध करेंगे तब विजयी होंगे या बिना युद्ध के विजयी हो जाएंगे? है युद्ध करना पड़ेगा। उसका नाम क्या है युद्ध का? क्या नाम है? महाभारी, महाभारत, गृह युद्ध। छोटा मोटा भारत नहीं, कैसा भारत? महाभारत। भारत में पहले पहले कौन निवास करते थे? हैं? कौन रहते थे? देव आत्माएं रहते थे। जिस भारत में देव आत्माएं रहती थी, वो देव आत्माएं देव भूमि कैसे बनाई? भारत में देव भूमि की राजधानी स्थापन हुई थी या नहीं हुई थी? है? नहीं हुई थी। हुई थी? बिना युद्ध के कोई राजधानी स्थापन होती है? युद्ध के बाद जीतते हैं, जीत पाने के बाद राजधानी जमाई जाती है। तो हिंसक युद्ध है नहीं, तो देहाभिमानी मनुष्य गुरुओं ने देहाभिमानी होने के कारण देह का युद्ध दिखाई दिया। शास्त्रों में हिंसक युद्ध दिखाई दिया। है कौन सा युद्ध है? भयंकर तो है। भयंकर ना होता तो पुरुषार्थ का अर्जन करने वाला, ज्ञान धन का अर्जन करने वाला अर्जुन हथियार छोड़ करके कमजोर क्यों बन जाता? अशक्त बन जाता है, युद्ध की भयंकरता देखता है। कर्मणि घोरे, हे भगवान मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? तो डरता है कि नहीं है? डरता है। डर देवान से आता है या आत्माभिमान से आता है? देवान से डराता है, क्योंकि देह समाप्त हो सकती है, विनाशी है क्या देह? आत्मा तो अविनाशी है। इस स्थिति में स्थिर होंगे आत्म की स्थिति में, तो कोई डर की बात है ही नहीं। तो बताया जो सर्व का सदगति दाता कहा जाता है, सर्वमय कितने आ जाते हैं? 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सभी आ जाती हैं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का कनेक्शन मनुष्य शक्ति के बाप से है या आत्माओं के बाप से है? मनुष्य शक्ति के बाप से है। क्योंकि मनुष्य सृष्टि के बाप में वो चीज है जिसके लिए बोला है ब्रह्मा के मुख से ब्रह्म वाक्य कि तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक ही बाप है, दूसरा कोई धर्म पिता नहीं। क्या? तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया, दोनों का खिवैया खे के कहां ले जाएगा? नाव को खे करके, खेवट बन करके, खिवैया बन करके कहां ले जाएगा? उस पार। माने उस पार क्या है? स्वर्णिम संगम युग। स्वर्णिम संगम युग में आत्माओं का बाप जाता है या मनुष्य सृष्टि का बाप जाता है? मनुष्य सृष्टि का बाप जाता है। वो जाएगा तो अपने फॉलोअर्स को ले जाएगा, खुद नहीं जाएगा तो फॉलोअर्स को भी नहीं ले जा सकता। तो वो एक ही खिवैया है जो शरीर को भी पार ले जाता है, माना शरीर के पांच तत्वों को भी पार ले जाता है। जिस पार ले जाता है वो पार लगने वाला स्थान सदगति वाला है या दुर्गति वाला है? है सदगति वाला है। सदगति में ले जाता है, दुर्गति में ले जाने वाला नहीं है। खुद भी दुर्गति में नहीं जाता और फॉलोअर्स को भी दुर्गति में नहीं ले जाता। जो सदगति में ले जाने वाला है वो सदगति का महामंत्र बताई दिया। क्या? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। तो तेरे मन में क्या है? लड्डू है, पेड़ा है, मिट्टी है, क्या है? क्या है? है जिस मन में समा जा उसमें क्या है? अरे कुछ है या नहीं है? क्या है? अरे 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 हमको लक्ष्य मिला है ना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई लक्ष्य मिला हुआ है ना। मेरा कौन? एक शिव बाबा, कोई दूसरा नहीं। तो जो मेरा है वो ही तो बोला है मेरे मन में समा जा। उसके मन में, उसके दिल में क्या है? जिसमें समा जा कुछ है या नहीं है? क्या है? अरे कोई भी दुनिया का बाप होता है, हिस्ट्री देख लो, उसके दिल में परिवार के अंदर कौन सा ऐसा भांति है जो समाया हुआ रहता है? हा? बड़ा बच्चा समाया हुआ रहता है। जो समाया हुआ रहता है सारे जीवन की कमाई हुई प्रॉपर्टी उस दिल में समाये हुए को सौंप करके चला जाता है। तो कौन समाया हुआ है? कौन है बड़ा बच्चा? है रामबाजी, अरे किसमें समाना है? शिव बाप में समाना है या शिव बाबा में समाना है? शिव बाबा में समाना है। शिव बाप किस पर फिदा होता है और शिव बाबा किस पर फिदा होता है? अरे कुछ अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? 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 शिव बाप आशिक बनता है किसका? शिव बाबा का आशिक बनता है। ये शिव बाबा टाइटल शिव बाप ने दिया है। ये टाइटल किसने दिया? शिव बाबा। उसे टाइटल का क्लैरिफिकेशन भी दिया। क्या? साकार और निराकार दोनों का मिल शिव बाबा कहा जाता है। वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। उसी को शिव बाप, आत्माओं का बाप चुनता है। किसके लिए? किस बात के लिए चुनता है? है? अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए चुनता है। किसलिए चुनता है? अपनी जो अखूट ज्ञान धन की प्रॉपर्टी है वो देने के लिए चुनता है। ठीक है, चुन लिया, अखूट प्रॉपर्टी दे दी। अभी ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी में क्या बोला? बाप ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, तुम बच्चों को सब कुछ दे दिया। लेने वाले नंबर वार हैं ना? तो कोई ने सब कुछ लिया या नहीं लिया? है? कब लिया? अरे सब कुछ ले लिया तो लेने का टाइम निर्धारित किया या नहीं किया? क्या टाइम निर्धारित किया? हैं? नबी हो तो 100 साल का है, ये कोई निर्धारित टाइम हुआ? है? हाँ, बताया, नाम भी दे दिया। नारायण का जन्म कब हुआ? है? बता दिया। तो जो बताया उसके अनुसार 76 आता है, 66 में बताया। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष किसके लिए बताया? नार आयन। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका घर कहाँ है? ज्ञान जल में ही उसका घर है। इस दुनिया में जहां कहीं भी देखने में आएगा, कहां का रहवासी देखने में आएगा? ज्ञान जल का ही रहने वाला है। और यहां शूटिंग पीरियड में रहने वाला है ज्ञान जल में, तो ब्रॉड ड्रामे में कहां रहने वाला होगा? है? ज्ञान जल में ही होगा। सतयुग त्रेता की आधे कल्प में बाकी तो बात ही छोड़ो, बात तो सभी आत्म की स्थिति में होते हैं, ज्ञान के सार में टिके हुए होते हैं, लेकिन द्वैतवादी धर्म पिताओं के आने पर इस दुनिया में वो एक ही आत्मा है जो द्वापर युग के आदि से और अंत तक भी, कलयुग के अंत तक भी ज्ञान जल में ही वास करती है। किसी उठा के देखो, पौराणिक हिस्ट्री उठा के देखो, वेदों की बात आती है तो किसका नाम आता है? है वेद व्यास। वेदों में भी पहला पहला शास्त्र कौन सा है? गीता। गीता भी जैसे मुरली में बोला, अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, तब बोला जब ब्रह्मा जी भी थे। अभी गीता ज्ञान मुरली है, क्या है? ज्ञान मुरली है, गीता ज्ञान अमृत नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? अरे अमृत अर्थात सार मक्खन कैसे बनता है? जब मंथन करते हैं, मथते हैं, तो अमृत निकलता है, सार निकलता है, मक्खन निकलता है। तो जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित रहे, उन्होंने मनन चिंतन मंथन किया नहीं किया? सरस्वती ने मनन चिंतन मंथन किया, लेकिन उन्होंने अपनी सीमा निर्धारित कर ली। क्या क्या सीमा निर्धारित कर ली है? मैं ब्रह्मा को फॉलो करूंगी, मैं ब्रह्मा की ब्राह्मणी हूँ, फॉलोअर हूँ। तो ब्रह्मा ने जो जो बातें बोली वो बेसिक ज्ञान का विस्तार किया। एक ही पॉइंट को लेकर के घंटों वाणी चला देती थी। इसलिए वाक देवी कही जाती है, काई की देवी, वाचा की देवी। लेकिन वो माता ने भी मनन चिंतन मंथन नहीं किया एक एक वाक्य का। किसके एक एक वाक्य का है? ज्ञान मुरली का। मुरली नाम क्यों दिया? मुरली काठ की होती है, की होती है काठ की। तो जिस मुख से बोला वो कठ बुद्धि था या नहीं था? बुद्धि कैसी थी? आकाश की बुद्धि थी, इसलिए नाम दे दिया कार्तिकी मुरली। उस मुरली का उस समय तक मनन चिंतन मंथन नहीं हुआ, फिर इशारा दे दिया कि आगे चल करके भविष्य में विचार सागर मंथन होगा और उस सागर मंथन में से असली चीज क्या निकलेगी है, ज्ञान अमृत निकलेगा, अमृत कलश निकलेगा। उसका टाइम निर्धारित कर दिया, क्या 76 से वो अमृत कलश निकला। निकला तो, लेकिन क्या हुआ गड़बड़ है? अमृत पीने के लिए, अमर बनने के जो दौड़ थी, उस दौड़ में झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हुआ है? क्या झगड़ा हुआ? यहां बैठो में से किसी ने इंटरनेट में वो देखा, क्या कहते हैं उसे, यह दुनिया भर की लड़ाई हो रही है मुरली के मां वाक्यों को लेकर। क्या कहते हैं उसे है? जोर से, फेसबुक। एक वाक्य और उस वाक्य को लेकर के ढेर सारी लड़ाई। बाल में से खाल, खाल में से बाल। और फैसला कुछ भी हो नहीं पा रहा। तो भयंकर झगड़ा शुरू हो गया, जिसका इशारा वेदवाणी में ही दे दिया। क्या? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला निकली, जिसमें सारी दुनिया स्वाहा हो गई। यज्ञ के आदि में भी ब्राह्मणों की दुनिया स्वाहा हुई थी, सन 47 में दूसरी ब्राह्मणों की दुनिया रची गई, वो भी सन 76 में स्वाहा हुई। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने से लेकर 76 तक फिर तीसरी बार ब्राह्मणों की दुनिया रची। पहली बार ओम मंडली से क्या नाम पड़ा है? ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। फिर क्या नाम पड़ा? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। वेदवाणी के अनुसार ही नाम पड़ा या मनुष्य मत पर नाम पड़ गया? वेदवाणी के अनुसार ही नाम पड़ा। और शास्त्रों में लिखा है तीन बार ब्रह्मा ने ब्राह्मणों की सृष्टि रची, तीनों बार बिगाड़ दी, समझ में नहीं आई, पसंद ही नहीं आई। तो अभी वो ही टाइम आ गया क्या जो इशारा दे दिया तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतु प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। 40 वर्ष लगते हैं का मतलब है कोई बच्चों का संगठन नया तैयार होता है 40 वर्ष पूरे होने पर, छोटी सी राजधानी तैयार होती है। आजकल देखा होगा मकानों का फाउंडेशन डालते हैं, मकान का ढांचा खड़ा करते हैं तो चारों तरफ क्या करते हैं है? क्या करते हैं? हाँ, पर्दा डाल देते हैं। तो जो छोटी राजधानी स्थापन होगी क्या होगा है? पर्दा डाल दिया जाएगा। वो नई राजधानी की स्थापना का कार्य सबको नजर नहीं आएगा। 10 साल का टाइम और दे दिया, 40 से 50 वर्ष, माने 10 साल पूरे होते होते वो छोटी सी राजधानी कंप्लीट राजधानी का रूप धारण कर लेगी। आठ से कितने? 108 का संगठन बन जाएगा। जो वेदवाणी में बोला क्या एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। माला माना ही संगठन। तो जो नारायण का जन्म क्षेत्र में बताया वो नारायण इस सत्य रूपी रंगमंच में विनाशी पार्ट बजाने वाला है या रंगमंच पर अविनाशी है? गीता में तो यही कहा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। जो सत्य है सच्चा है उसका इस संसार में अभाव नहीं होता है कभी भी, और जो झूठ है वो टिकता नहीं। और सत्य एक है या अनेक है? सत्य एक है, बाकी सब झूठ है। जो सत्य एक है वो ही सत्य है, जो सत्सी अकाल गाया हुआ है। क्या? कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खाने वाला नहीं, वो सारी दुनिया को खाएगा। दंसा करालान चते मुखाने, क्या उसका रूप ऐसा दिखाया है, विकराल दाढ़ों वाला। ये एटम बम रूपी जो दाढ़े है ना, वो ऊपर भी तैर रही है और समंदर के अंदर भी है, जमीन में भी है। उन दाढ़ों के बीच में सारी दुनिया चबाई जाने वाली है। वो सारी दुनिया को चबा जाएगा, लेकिन उसको खलास करने वाला कोई नहीं। इसलिए गया हुआ है कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता। इसलिए गया हुआ है कि वो बड़े से बड़ा तीर्थ है, सर्व का सदगति दाता है, 500-700 करोड़ का भी सदगति, सच्ची गति का देने वाला। कैसी सच्ची गति? आत्मिक स्थिति की सच्ची गति, प्रैक्टिकल में सच्ची गति, या देवान में रहने की गति है? आत्मिक स्थिति में रहने की सच्ची गति देने वाला है। उसका जन्म स्थान यहाँ है, यहाँ माने भारत में है। तो ये सबका बड़े से बड़ा तीर्थ हो गया, ठिकाने लगने वाला स्थान, किनारे लगाने वाला स्थान, तीर माने किनारा। ऐसे है ना, ये सब जो भी यहाँ आवे आए कर करके यह हुआ मेन, माना दुनिया के जो भी महान से महान धर्म पिताएं गाए हुए हैं, माने जाते हैं, वो सब कहाँ आवेंगे? हैं? यहाँ आवेंगे, सलामी भरेंगे, परंतु समझ में पूरा नहीं आएगा। इसलिए अपने अपने कहाँ चले जाएंगे? अपने अपने विनाशी धर्मखंड में ही वापस चले जावे। जैसे उनकी मैन होती है ना चर्च, बात में बात कोई समझ में नहीं आती है, कोई को कोई बात समझ में नहीं आती है, तो अपने परिवार के बातियों को इकट्ठा करके चर्चा करते हैं। क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो यहाँ आवेंगे, सलामी तो भरेंगे, लेकिन वापस चले जावेंगे, फिर क्या करेंगे? वहां चर्च में चर्चा करेंगे। जैसे रोम में इनका पोप रहता है, तो उस रोम के चर्च को कहा जाता है मेन चर्च, जिसमें उन सबका बड़ा रहता है। जो भी चर्च होते हैं उनमें फादर्स होते हैं ना, तो उन फादर्स का सारी दुनिया में जो बड़ा मेन चर्च है रोम में, वहां जाते हैं। यूं तो चर्च तो बहुत होते हैं, पादरी लोग इनका भी बहुत जगह होता है, परंतु मेन चर्च हो गई ना, तो ये है पतित पावन। कौन है? चर्च है पतित पावन। हाँ, क्या मतलब? मैंने उनका मिसाल दिया, कहाँ इकट्ठे होंगे, जो सत्य सनातन धर्म के भांति हैं, वो भी तो इकट्ठे होंगे ना, जिनको समझ में नहीं आवेगा। सर्व का सदगति दाता ये है, मिसाल दिया, रोम में उनका बड़ा चर्च है। सब चर्चों में जो फादर्स होते हैं उनका मुखिया कहाँ हुआ? रोम में। तो ये जो भी हैं, जैसे वो पादरी होते हैं, जो भी हैं, सब का सदगति दाता यहाँ का जन्म है। धर्म पिताओं का भी सदगति दाता कहाँ? कहाँ? भारत में। तो देखो ये भूमि कितनी ऊंची है, क्या नाम दिया है? भूमि। भू माने, भू माने क्या? अरे भू माने पृथ्वी। शिव बाप कहाँ आते हैं? है? भारत में आते हैं। क्या जड़ जमीन की बातें हैं? तो कहाँ आते हैं? है? हाँ, उस चैतन्य भूमि में आते हैं, जिसको बड़े से बड़ी माँ कहा जाता है, जिसके ये शास्त्रों में गायन है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको नमन करता हूँ, वो है असली भूमि जहाँ भगवान आते हैं। जड़ भूमि की बात है या चैतन्य भूमि की बात है? चैतन्य भूमि माने क्या है? वो रथ है जो पांच तत्वों से बना हुआ रथ है, जिसके लिए बोला क्या, तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया रथ दोनों का पार लगाने वाला एक ही खेवैया है। इसलिए इस भारत भूमि को कहते हैं वंदे मातरम। क्या कहते हैं? वंदे मातरम। माता की वंदना करता हूँ, परंतु वंदे मातरम भूमि नहीं, वंदे मातरम भूमि की बात है। क्या इस भूमि पर जो ये फिर बच्चियां हैं बाबा की, जो बैठ करके सीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बनाती हैं, हेवन बनाती हैं। क्या बनाती है? स्वर्ग। नाम क्या दिया? स्व ग। कहाँ गया? स्व स्थिति में गया। हैविन मनाती है, अंग्रेजी में कहते हैं हैविन। बिन माने जीतना, हैविन माने जीत लिया। जो जीत लिया वो हैविन, और हार गया तो हेल। और वरदान मिला है तुम बच्चों को, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो विजय कब मिलेगी? जिस तन में आते हैं सुप्रीम सोल बाप, वो पुरुष तन है या स्त्री चोला है, बच्ची है या बच्चा है? है तो बच्चा, क्योंकि भगवान कभी भक्ति मार्ग में स्त्री रूप में नहीं दिखाया गया। दिखाते हैं कहीं? नहीं, पुरुष रूप में ही आते हैं। क्यों? पुरुष रूप में क्यों आते हैं? है? नहीं, पूर्ण होता तो आने की जरूरत ही क्या है? अरे है संघ का रंग, संघ का रंग में आते हैं। पुरुष चोले को संघ का रंग नहीं लगता है? वेदवाणी में तो बोला है भगवान ने कि मैं पतित तन में आता हूँ या पावन तन में आता हूँ। और पतितन दुर्योधन दुशासनों का होता है या कन्याओं माताओं का कहेंगे? खास करके भारत की कन्याओं माताओं के लिए तो नहीं कहना चाहिए, विदेश की कन्याएं माताएं हो, विदेश की नदियां हो, वो तो पतित पावनी नहीं कही जाती। भारत की कन्याएं माताएं, भारत की नदियां पतित पावन ही कही जाती हैं। वो भी परिभाषा बताई, कौन सी नदियां पतित पावन ही कही जाती हैं? जिनका है, जिनका सागर से कनेक्शन है, संबंध जुटा हुआ है कर्मेंद्रियों का, मन बुद्धि का, तो पतित पावनी। संबंध नहीं जुटा हुआ है तो नदी नहीं, वो नाला है। तो बताओ संबंध जुड़ता है तब पतित पावनी है, या संबंध नहीं जुटा है तो पतित पावनी है? है? अच्छा बताओ, भारत की वो नदी का नाम क्या है जिसमें बहुत जल की धारा भरी हुई है, बड़ा लंबा सफर करके आती है? नीची स्टेज से आती है बहती हुई या ऊंची स्टेज से बहती हुई आती है? है? ऊंची स्टेज से बहती हुई आती है। और सागर में या गंगा से बाद में मिलती है, गंगा सागर मेला कहा जाता है ना, सागर से या गंगा से बाद में मिलती है, पहले गौहट्टी से टकराती है, गौहाटी। क्या नाम दिया? गौ कैसी है? हट्टी स्वभाव संस्कार की। बाद में गंगा से मिलकर के सागर में गिरती है, तो हैविन बनाती है। क्या? वो नदियां सागर से मिलती है तो हैविन बनाती हैं। जब तक सागर से नहीं मिलती, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, ब्रह्मपुत्रा हो, जिसका नाम ब्रह्मपुत्री भी दिया है, वो स्वर्ग नहीं बना सकती। तो ये बच्चियां हैं बाबा की, जो बैठ करके श्रीमत पर इस भारत को, किस भारत को है, पुरुषतन भारत को या स्त्री चोले भारत को है, पुरुषतनधारी भारत को, जिन पुरुषों के बारे में क्या बोला, पुरुष साहब साहब दुर्योधन दुशासन है, दुष्ट युद्ध करने वाले हैं, दुष्ट शासन करने वाले हैं। क्या किसी को बस में करना है, शासित करना है, तो प्यार से शासित करना अच्छा या दुष्ट शासन बन करके, शासक बन करके, दुष्ट युद्ध करके शासन करना अच्छा है? प्यार का शासन अच्छा या युद्ध का शासन अच्छा? की दुनिया में जो शासन चल रहा है देश देशांतर में, उसे दुष्ट शासन कहें या प्यार का शासन कहें? भारत में देवी देवताओं का शासन कैसा था?
प्यार का शासन,
आत्मिक प्यार का शासन था। यथा राजा तथा प्रजाति। और अब पहले अपने बच्चों के लिए स्विट्जरलैंड की बैंक में धन इकट्ठा करते हैं शासक, या प्रजा के लिए खर्च करते हैं? पहले क्या करते हैं? हैं? अपने देह के जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए जन्म जन्मांतर का प्रबंध करते हैं। जो प्रजा है, क्या नाम दिया उसको? प्रजा। प्रकृष्ट रूपेण जायते। जो प्रकृष्ट रूप से जन्म लेती है उसको प्रजा कहा जाता है। कबलिया प्रकृष्ट रूप से जन्म, सामान्य रूप से तो इस दुनिया में जन्म होता है वृक्ष इंद्रियों से, त्रेसठ जन्म से होता आया। विशेष रूप से ज्ञानेन्द्रियों से जन्म होता है सत्युग त्रेता के देवताओं द्वारा, ज्ञान इंद्रियां कही जाती हैं। कैसी इंद्रियां? ज्ञान, ज्ञान माने जानकारी है जिनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और प्रजा प्रकष्ट रूप से जहां जन्म लिया है वो प्रजा कहां की बात है, है? संगम युग की बात है, जहां लक्ष्मी नारायण ने चाहे ज्ञानेन्द्रियां हो देह के अंग और चाहे कर्म इंद्रियां हो देह के अंग, उन ज्ञानेन्द्रियों और कर्म इंद्रियों का आचरण करके जन्म नहीं दिया। कौन सा आचरण करके जन्म दिया? जो प्रजा कही गई, जिस प्रकष्ट रूप से जन्म लेने वाली प्रजा को जन्म देने की युक्ति भगवान बाप ही एक आकर सिखाता है। कैसी प्रजा है? कैसी प्रकष्ट प्रजा है? भूल गए? अतीन्द्रिय सुख है पूछना हो तो है, गोप गोपियों से पूछो, वो हैं असली शासक। जिन 16108 गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप गोपियों ने मनसा के वाइब्रेशन से नर से नारायण बनने वाले, नारी से लक्ष्मी बनने वाले आत्माओं ने देह की इंद्रियों का कोई आचरण किए बगैर राधा कृष्ण जैसे बच्चों का जन्म दिया, सत्यगुण। लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखाया है, क्या दिखाया है, है? लक्ष्मी नारायण कौन सी दुनिया में खड़े हैं? नारायण ज्ञान जल ही उनका घर है, इसलिए लक्ष्मी नारायण के आसपास जो प्रकाश वलय की दुनिया दिखाई है वो दैहिक दुनिया नहीं है। कौन सी दुनिया है? ज्ञान प्रकाश की दुनिया है, जहां के वो रहने वाले वहां ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के आचरण का कोई सवाल ही नहीं। ऐसे वातावरण से, ऐसे वाइब्रेशन से जिस प्रजा का जन्म हुआ वो प्रजा कही जाती है यथा राजा तथा राजा। जैसे सुख समृद्धि में रहेगा वैसे ही सुख समृद्धि में प्रजा भी रहेगी। तो ऐसा हैवन बनाती है ये बाबा की बच्चियां। किसकी बच्चियां? बाबा माने जो माउंट आबू में बैठी है वो बाबा की बच्चियां, क्यों वो क्यों नहीं? अरे वो ब्रह्मा बाबा की बच्चियां नहीं है? हैं या नहीं है? साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है, तो वहां साकार है, उस साकार में निराकार है, तो बाबा कहां से हो गया? जब बाबा ही नहीं तो बाबा की बच्चियां कहां से हो गई? तो कहां की बात है, है? कहां की बात है? जो एडवांस ज्ञान में चलने वाली बच्चियां हैं उन बच्चियों की बात है। ये बच्चियां हेविन बनाती हैं, अर्थात स्वर्ग के गेट खोलती हैं। नहीं तो या तो स्वर्ग का गेट खोलने वाली बच्चियां, नहीं तो नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती है। आओ तुम भी नरक में गिरो और हम भी नरक में गिरे। काहे में गिरे? नरक क्यों नाम दिया है? नर जो बनाए जो करे सो नरक, और स्वयं स्थिति में रहकर जो बनाए वो स्वर्ग। तो स्वर्ग बनाने का मूल कौन? जो पहले पहले अपना वाइब्रेशन स्वयं स्थिति का बनाता है, फिर दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर कौन? जो नदी अविनाशी संबंध जोड़े। कैसा संबंध? अविनाशी संबंध, क्योंकि बोला संबंध जोड़ना बड़ी बात नहीं, बड़ी बात क्या है? निभाना बड़ी बात। तो नदियों में जो नदी अविनाशी संबंध जोड़ने वाली है, अंत तक निभाने वाली है, और उसके साथी भी होंगे, अकेली होगी ये, संगी साथी भी होंगे, संगी साथी भी होंगे, तो वो हेवन बनाती है। तुमको समझना चाहिए अच्छी तरह से, किसको? तुमको। किसको कहा जाता है तुमको? जो सन्मुख बैठते हैं उनको कहा जाता है तुमको। सन्मुख भी एक प्रकार से होता है या दो प्रकार से होता है? दो प्रकार से माने क्या है? अंदर के वाइब्रेशन से भी और बाहर के वाइब्रेशन से भी, बाहर की दृष्टि वृत्ति से भी। बाहर से देखने में आए ये साथी है, फुल सरेंडर है, और अंदर में विरोधी संकल्प भरे पड़े। क्या? मुख मेहराम, बगल में छुरी, तो उनको सन्मुख कहेंगे या विमुख कहेंगे? हैं? विमुख ही कहेंगे। अंदर से एक और बाहर से दूसरा, मुरली में बाप ने बोला जो अंदर से एक और बाहर से दूसरा है ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। माना मेरे नजदीक नहीं आ सकता, माना नजदीक नहीं आ सकता, माना मेरे राज परिवार में नहीं आ सकता। 16108 की लिस्ट में नहीं आ सकता। तो तुमको समझना चाहिए अच्छी तरह से कि हम इस भारत को अभी सीमत पर पैराडाइज बना रहे हैं। तरीका बताया, क्या युक्ति से बनाए रहे हैं? सीमत पर कल्प कल्प हम पैराडाइज बनाते हैं। और अपने लिए बनाते हैं, क्या दूसरों के लिए नहीं बनाते। अपने लिए माने जो अपने बाप के परिवार के प्रैक्टिकल में भांति बनते हैं उनके लिए बनाए रहे हैं। जो आत्माओं के बाप के प्रैक्टिकल बच्चे आत्मा ज्योति बिंदु बनते ही नहीं, देहंगार में ही बने रहते, उनके लिए नहीं बना रहे। ओम शांति।